इस प्रकार छायावादी कवियों ने चुने हुए तथ्यों को उपलक्ष्य बना करके अपने जीवन के अनेक सत्यों की अभिव्यंजना की। इस प्रक्रिया में छायावाद का ध्यान वस्तु के बाह्य आकार की अपेक्षा या तो उसमें निहित भाव की ओर गया या उसकी सूक्ष्म छाया की ओर। प्रगति चित्रण में पहले के कवि जहाँ पेड़ पौधों का नाम गिनाकर अथवा प्राकृतिक दृश्यों के स्थूल आकार का वर्णन करके संतुष्ट हो लेते थे, वहाँ छायावादी कवि ने प्रकृति के अंतःस्पंदन का सूक्ष्म अंकन किया। वृक्ष की अपेक्षा उसका ध्यान छाया की ओर था। यहाँ तक कि संपूर्ण कविता सुछवि की छायावान की सांस हो गई। केवल छाया ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक सूक्ष्म उसकी सांस अर्थात सांस लेती हुई छाया का स्पंदन। यदि संध्या का वर्णन करते हुए देवेदी योगीन कवि हरिऔध ने लिखा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा फरती अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो उसी संध्या का चित्रण मेघमय आसमान से उतरती सुंदरी के रूप में करते हुए निराला उसकी गतिविधि इस प्रकार आंकते हैं। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास, अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह वेला, सखी निरवता के कंधे पर डाले बाँ, छा के अंबर पथ से चली। कहाँ तो सांद गगन में लोहित रंगों की चटक मटक और कहाँ निस्पंद तिमिरांचल अलसता की लता तथा निरवता युक्त छा का संचरण। इस तरह छायावाद वस्तुगत सौंदर्य के सूक्ष्म स्तर का उद्घाटन करके हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वास्तवतः प्रकृति अपने आप में सुंदर नहीं है, उसका सौंदर्य मनुष्य के लिए है और त्रिवेदी युग युग से प्रकृति को अपने तन मन से सुंदर बनाता आ रहा है। एक और मनुष्य के हाथों निसर्ग का नैसर्गिक सौंदर्य और निखरता आया है तो दूसरी ओर मनुष्य का मन उस वस्तुनिष्ठ सौंदर्य के भी अनेक सूक्ष्म और अज्ञात स्तरों का उद्घाटन करता रहा है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के छुपे हुए इतने सौंदर्य स्तरों की खोज की वह आधुनिक मानव के भौतिक और मानसिक विकास का सूचक है। इस सौंदर्य बोध का विकास प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों का परिणाम है। प्रकृति ने मनुष्य में सौंदर्य बोध जगाया और मनुष्य ने उद्बुद्ध होकर प्रकृति में नवीन सौंदर्य की खोज की और इस तरह दोनों परस्पर वर्धमान हुए। छायावाद के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण ने प्रकृति सौंदर्य में सूक्ष्मता नहीं दिखाई बल्कि मानव सौंदर्य में भी स्थूल शारीरिकता की जगह स्वस्थ मानसल तथा भावात्मक सूक्ष्मा की प्रतिष्ठा की। मध्ययुग के कवि नारी की जिन भावों को कमान समझते थे, छायावादी कवि के लिए उन्हीं करुण भावों में था आकाश या नहीं। कपोलों में उरका मृद भाव, श्रवण नयनों में प्रिय वर्ताव, सरल संकेतों में संकोच, मृदु अधरों में मधुर दुराव। इन पंक्तियों से नारी का स्थूल आकार ही सामने नहीं आता बल्कि सुंदर अंगों के माध्यम से उसके आंतरिक भाव सौंदर्य का भी आभास मिल जाता है। नारी की लज्जा का चित्रण मध्ययुगीन कवियों ने भी किया था, किंतु कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलने वाले लाज भरे सौंदर्य को तो प्रसाद नहीं दिखा। इसके अतिरिक्त कामायनी में नारी को लज्जा का जो भव्य चित्रण हुआ है वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। प्रसाद जी का नारी सौंदर्य चित्रण पंत जी की तरह भाव प्रधान होते हुए भी कहीं अधिक मानसल है, लेकिन प्रसाद जी से भी इस विषय में आगे निराला है। सामान्य नारी के सौंदर्य का चित्रण तो सभी करते हैं, लेकिन वह नारी यदि स्वयं अपनी पुत्री हो तो कवि की परीक्षा हो जाएगी। स्वस्थ मन और समर्थ कवि निराला के लिए ही यह संभव न हो सका कि उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की श्रुति में शोक गीत लिखते हुए एक स्थल पर उसके सौंदर्य का भी स्मरण किया है। विवाह के शुभ कलश पर जल पड़ने के बाद वह आमूल नमल रूप, तू खुली एक उच्चवास संग, विश्वास स्तब्ध बांध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा आदरों पर थर थर थर। और कवि ने अनुभव किया कि श्रृंगार रहा तो निराकार, रस कविता में उच्च विस्तृत धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, प्रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। अर्थात सरोज ही नहीं बल्कि उसका रूप भी कवि की सृष्टि है। कवि के निराकार भाव के जैसे रूप धारणा करके सरोज बन गए। भावात्मक दृष्टि से मूर्त रूप चित्रण का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। दृष्टिकोण अमूर्त है किंतु दृश्य मूर्त है। जब प्रसाद जी ने सौंदर्य को उज्ज्वल वरदान चेतना का कहा तो प्रकारांतर से उन्होंने इसी भावात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया। इसी बात को रविंद्रनाथ ने अत्यंत स्पष्ट ढंग से चैताली की मानसिक कविता में व्यक्त किया है। शुद्ध विधातार सृष्टि न तुम नारी, पुरुष गणे क्षेत्र तोर सौंदर्य संचारी, आपन अंतर होते हार्दिक मानवी तुम्हें हार्दिक काल्पना। इस प्रकार महादेवी के शब्दों में सौंदर्य के स्थूल जड़ता से मुक्ति मिलते ही नारी को प्रकृति के समान ही रहस्यमय शक्ति और सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिसने उसके मानसिक जगत से पिछड़ी संकीर्णता ढो डाली। लेकिन व्यक्तिवाद की तरह व्यक्तिनिष्ठ भावात्मक दृष्टिकोण में भी क्रमशः अतिरेक होता गया। कवि के अनुसार जब मन की सर्वसृजन है तो उसने प्रकृति के वस्तुनिष्ठ रूप का सर्वथा निषेध करके उसके स्थान पर एकदम मानसिक प्रकृति खड़ा कर दी। ऐसा पंत जी के यहाँ प्रायः हुआ है। उनकी चांदनी धीरे धीरे कपूर सी उड़ती उड़ती इतनी अदृश्य हो गई कि अंत में हैरान कवि को कहना पड़ा कि वह है वह नहीं अनिर्वच। जब तक वह लघु परिमल के घन सी थी तब तक तो गनीमत थी, लेकिन अंत में वह अनुभूति मात्र सीवर में रह गई। भाववादी दृष्टिकोण की यह पराकाष्ठा है। प्रकृति की तरह नारी भी इस भाववादी दृष्टिकोण के अतिरेक का शिकार हुई है। एक और निराला के यहाँ यह विचार रही थी सानस की प्रतिमासी, तो पंत के मुख से बन गई मानसी तुम साकार, उच्चरित होकर भी वह मूलतः मानसी ही रही। इन सब बातों को देखकर आलोचकों ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा। व्यक्तिवाद के मूल से छायावाद में जो तीसरी बात पैदा हुई वह है भावुकता। सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध यदि सामूहिक विद्रोह होता तो इतना असंतोष और निराशा का अनुभव न होता, किंतु छायावादी कवि का विद्रोह वैयक्तिक था, इसलिए स्वभावतः एक एकाकी संघर्ष में से पद पद पर पराजय और निराशा का अनुभव हुआ। दुख उसका सहचर बन गया। छायावाद की आरंभिक कविताओं में उच्छ्वास और आंसू का बाहुल्य इसीलिए है। कवि की इस मना स्थिति को उसकी सामाजिक असामाजिकता तथा एकांत प्रियता ने और भी गहरे विषाद में रंग दिया। जिन कवियों में स्पष्ट उच्छ्वास और आंसू नहीं है उनमें एक विलक्षण प्रकार का विषाद दृष्टिगोचर होता है। प्रसाद के झरना का विषाद तथा उनके स्कंदगुप्त की अवसाद और उदासी से मिली जुली विषण मना स्थिति ऐसी ही है। कामायनी की एकाकी मनु की आरंभिक चिंता और निराशा इसी विषाद के दूसरे पहलू है। पंत जी का उन्मन गुंजन भी ऐसा ही कुछ है। बात यह है कि आधुनिक परिस्थितियों ने इस युग के व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। वह अपने उल्लास आह्लाद व्यथा आदि किसी को भी दबा सकने में असमर्थ था। इन भावों के व्यंजना यूं तो पहले के कवियों ने भी की है, किंतु उनके इस प्रकार के संयम और मर्यादा का अनुभव होता है। कबीर सूर तुलसी के करुणा विगलित आर्त आत्मनिवेदन में भी परिणत वय और धीर स्वभाव का संयम है, किंतु छायावादी कवि में उच्छल भावुकता का अबाध उद्गार है। यहाँ तक कि भावुकता छायावाद का पर्याय हो गई। आमतौर से लोगों में छायावादी कहने के माने ही था कि किसी को अत्यंत भावुक कहना। निसंदेह विकास क्रम में यह भावुकता धीरे धीरे कम होती गई और कैशोर वैभव भावुकता का स्थान प्रौढ़ चिंतन ने ले लिया। कि लेकिन अतिरिक्त सी प्रतीत होने वाली इस कैशोर भावुकता ने छायावादी कवि की ऐसी दृष्टि दी जिसे कल्पना शक्ति कहते हैं। यूं तो यह कहना सकना कठिन है कि भावुकता ने कल्पना शक्ति को जागृत किया या कल्पना शक्ति ने भावुकता को, फिर भी यह निश्चित है कि छायावादी भावुकता और कल्पना में अन्योन्याश्रित और अभिन्न संबंध है। कविता में भावाभिव्यंजन और कल्पनाकलन पहले भी हुआ है, परंतु भाव प्रबलता से प्रेरित कल्पना शक्ति का जो वैभव छायावादी कविता में दिखाई पड़ा वह अभूतपूर्व है। छायावादी कवि इस रोमांटिक अथवा स्वच्छंद कल्पना को केवल कल्पना नाम से ही पुकारते थे। संभवतः कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता छायावाद के द्वारा मिली उतनी पहले कभी न मिली थी। छायावाद युग में कल्पना कविता का पर्याय होगा। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा और पंत ने अपने पल्लव की कविताओं को कल्पना के से विह्वल बाल। छायावादी कवियों के लिए कल्पना बिल्कुल बुनियादी चीज थी। कल्पना उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। उनकी कल्पना शक्ति को दबाने का अर्थ था स्वयं उनके व्यक्तित्व को दबाना। कल्पना ही उनकी वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपने बंधनों की सीमा में रहते हुए भी उन्मुक्त आकाश में विचरण करने का सुख लेते थे। कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी। वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह, आनंद आदि की आकांक्षाओं के प्रतीक थी। कल्पना के द्वारा एक ओर वह अतीत में जा पहुंचता, दूसरी ओर भविष्य के स्वर्ग स्वर्ण युग को अपनी आंखों के सामने साकार करता था। एक ओर असीम आकाश में उड़कर आनंद लोभ बसाता था, दूसरी ओर वस्तुगत रहस्यों का पता लगाता था। कल्पना उसकी राग शक्ति भी थी और बोध शक्ति भी। कल्पना शक्ति का प्रयोग प्राचीन और मध्य के कवियों ने भी किया है और इसके द्वारा काव्य में अत्यंत रमणीय और प्रस्तुत विधान की सृष्टि की है। कविता प्रस्तुत करने के लिए जो प्रस्तुत की योजना की गई वह कल्पना का ही व्यापार है। मार्मिक उपमाओं के भाव कालिदास की कल्पना शक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक छायावादी कविताओं के साथ कालिदास की रचनाओं को मिलाकर देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना कालिदास के लिए गौण वस्तु थी। वास्तविकता ही उसका प्रधान लक्ष्य था। कालिदास का मेघ पंत के बादल से अधिक वास्तविक और कम कल्पना बाहुल है। मेघदूत में मेघ के लिए जगह जगह निस्संदेह बड़े ही मनोरम उपाय और उत्प्रेक्षाएँ लाई गई हैं, लेकिन अंततः उससे रामगिरी से लेकर कैलाश तक की भारत भूमि की यात्रा कराई गई है। कालिदास का मेघ उत्तर भारत की नदियों और पहाड़ों को ही देखता हुआ कैलाश नहीं पहुँच जाता, बल्कि विदिशा, उज्जैनी, दसपुर आदि प्रसिद्ध नगरों को भी देखना नहीं भूलता। यहाँ तक कि उज्जैनी उसके रास्ते में नहीं पड़ती, फिर भी उस महानगरी के लिए मेघ थोड़ा घूम जाता है। वास्तविकता की ओर कालिदास का ध्यान इतना था कि नगरों के अतिरिक्त जनपदों से भी अपने मेघ को जाने का आदेश देते हैं। उन्हीं जनपदों में से एक है मालवा। इसके तुरंत जोते हुए खेतों में उठने वाली सौंधी गंध से गुजरते हुए मेघ का सौंदर्य वहाँ की जनपद वस्तुओं के लोचनों से लिया जाता है। जनपद वासियों को स्नेह करने वाले कालिदास मेघ से आग्रह के साथ कहते हैं कि फूल चुनते चुनते जो मालवी मलिनियाँ थक गई हैं और पसीने के कारण जिनके कर्ण फूल को मिला गए हैं उनका पसीना अवश्य पोछ देना। लेकिन पंत जी का वायवी वादल यही नहीं कि इस धरती से सर्वथा अनजान है, बल्कि स्वयं भी अधिकांशतः कल्पनापुंज है। इस वादल का परिचय स्वयं उसी के शब्दों में, हम सागर के धवल हास हैं, जल की धूम, गगन की धूल, अनिल फीन उषा के पल्लव, वारि वसन वसुधा के बूल, नवमे अवनि अवनि में अम्बर, सलिल भस्म मारुत के फूल, हम ही थल में थल जल, थल में जल, दिन के तंपावक के तूल। इस वस्तु को देखकर यदि प्राचीन कवि को अधिक से अधिक उस वस्तु से मिलते जुलते अथवा उससे संबंध एक दो या अन्य अप्रस्तुत वस्तुओं की याद आती रही थी, तो छायावादी कवि के मन में सैकड़ों एसोसिएशंस अथवा स्मृति चित्र जाग जाते थे। यमुना को देखकर यदि बिहारी ने इतना ही कहा था कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन वय जात अजव वहें वा जमुना के तीर, तो निराला के मन में यमुना से संबंधित सैकड़ों स्मृति चित्र उभर आए और यमुना के किनारे उन्होंने कल्पना की एक दूसरी सृष्टि खड़ी कर दी। वस्तुतः निराला ने वर्तमान यमुना पर एक दूसरी यमुना बहा दी और यह यमुना अतीत की यमुना का संस्मृत नवीन संस्करण है। अतीत की ओर यह स्नेह मुग्ध दृष्टि और उसे पुनर्जीवित करके लौटा लाने की आकुलता कल्पना के अनेक व्यापारों में से एक है। कवि यमुना से कहता है, किस अतीत का दुर्जय जीवन अपनी अलकों में सुकुमार, कनक पुष्प सा गूथ लिया है, किसका है यह रूप अपार। और फिर इस कल्पना कलित यमुना के आदि स्रोत का पता पूछने के लिए कवि कहता है, किस अतीत से मिला आज वह यमुने तेरा सरस प्रवाह। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निराला के इस यमुना का आदि स्रोत कल्पना का अतीत शिखर है, वर्तमान हिमालय नहीं। इस परिवर्तित परिस्थिति की विभीषिका से घबरा कर पंत जी स्वर्णिम अतीत को पुकार उठते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातम स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। और प्रसाद तो जैसे अतीत प्रवासी ही थे, महाप्रलय में विनष्ट देव सृष्टि की मधुमय याद करते हुए प्रसाद के मनु का कराह उठते हैं, गया सभी कुछ गया मधुरतम। यह वह सृष्टि थी जिसमें चलते थे सुरभि अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास और सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अतीत। अतीत में मन की उड़ान वर्तमान से असंतोष का ही परिणाम है। जिस प्रकार वर्तमान से असंतुष्ट मन अतीत की ओर भागता है, उसी तरह इस जगत से असंतुष्ट होकर किसी अन्य जगत में खोज में निकल पड़ता है। और न मिलने पर कल्पना के द्वारा एक सुखद लोक की सृष्टि कर डालता है। छायावादी युग में उस पार और क्षितिज के उस पार जैसी बातें जो अक्सर सुनाई पड़ती थीं, वह इसी भावना की अभिव्यक्ति थी। परिमल निराला स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमें जाना है जग के पार, और कमायनी के मनु जब आह भरते हैं, आह कल्पना का सुंदर व जगत विदुर कितना होता, सुख स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता सोता, तो उसी कल्पना लोक की ओर संकेत करते हैं। कभी कभी बिना किसी प्रकार के तात्कालिक असंतोष के ही किसी सुंदर दृश्य को देखकर मन दृश्य जगत से परे कल्पना के अदृश्य में जा पहुंचता है। जैसे निराला के तुलसीदास को चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा देखते ही पंख लग जाते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग, छोड़ता रग रग पर रंग पर जीवन। छायावाद में जो स्वप्नों की बहुत चर्चा है, वह या तो ऐसे ही दिवा स्वप्न के रूप में अथवा जीवन संघर्षों में थके हुए मन के सो जाने पर आए हुए सुखद स्वप्न के रूप में। जिस प्रकार छायावाद युग की अधिकांश प्रतिमाएं छायाजीवी हैं, उसी तरह अधिकांश पात्र स्वप्नजीवी हैं। यहाँ तक कि निराला के राम भी उनके तुलसी की तरह रह रहकर स्वप्न में डूब जाते हैं। कभी उनकी आंखों में पृथ्वी तनया कुमारी का छवि पहुंच जाती है, और कभी सामने का भूधर पार्वती सा प्रतीत होने लगता है, और अंत में ही कल्पना ही शक्ति प्रकट होकर उन्हें वरदान दे जाती है। जीवन संघर्षों से हारता हुआ व्यक्ति किसी प्रकार की कल्पना के द्वारा शक्ति अर्जित करता है अथवा आत्मविश्वास के लिए विजय की कल्पना करता है। राम की शक्ति पूजा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य कवि की कल्पना को किस प्रकार जागृत करता है और उसे जगत जीवन को समझने की अंतर्दृष्टि देता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण निराला का तुलसीदास है। भारत की तत्कालीन वास्तविक स्थिति का बोध इस तुलसीदास को कल्पना लोक में ही होता है। अंतर्दृष्टि दायनी कल्पना और जीवन शक्ति दायनी कल्पना, इन दोनों की सुंदर अभिव्यंजना छायावादी काव्य में हुई है। प्रकृति सौंदर्यजनक कल्पना में ही कामायनी की चिंता पर मनु के मन में आशा का संचार कर किया जाए और जीवन से निराश हृदय में जिजीवसा जगाई, मनु अनुभव करने लगे, मैं हूँ यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी करने लगा मैं रहूं शाश्वत नव के गानों में। छायावाद युग की कविताओं को देखने से पता चलता है कि उन कवियों को संसार में वस्तु सबसे अधिक सुंदर, उदात्त, मधुर, अपराजेय अर्थात किसी बात में श्रेष्ठ हुई है, उसे उन्होंने कल्पना नाम दिया है अथवा कल्पना से उपमित किया है। पंत जी यदि बादल को विपुल कल्पना से त्रिभुवन की, अम्बुध की कल्पना महान आदि कहते हैं, नक्षत्र की अय आनंद की अगम कल्पना बतलाते हैं, छाया को ही गूढ़ कल्पना सी कवियों की मानते हैं, तो अनंग को प्रथम कल्पना कवि के मन में और अप्सरा को भी अखिल कल्पनामयी अई अप्सरी संबोधित करते हैं। इस तरह प्रसाद जी भी हिमालय की उदारता बतलाने के लिए यहाँ उपमान चुनते हैं, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह। तात्पर्य यह है कि कल्पना छायावादी कवियों की मौलिक विशेषता है। इसी ने कवि को रहस्यदर्शी बनाया, असीम और आनंद की सार्वभौम अनुभूति दी, अति परिचित वस्तुओं में भी अपरिचित सौंदर्योद्घाटन की अंतर्दृष्टि दी तथा विरूप वस्तुओं को भी रूपमय बनाने की क्षमता प्रदान की। इसी ने कवि में नवीन इंद्रिय बोध जगाए और अभूतपूर्व संवेदनशीलता उभारी। छायावाद की अनुभूति रमण कवियों ने वर्ण, ध्वनि, गंध, स्पर्श, रस आदि के अत्यंत सूक्ष्म इंद्रिय बोध का परिचय दिया। अग्निशिखा के रंग को स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी उसे मधुपिंगल तरल अग्नि कहते हैं, तो हिम संस्कृति पर पड़ते हुए आलोक का वर्ण सौंदर्य दिखलाने के लिए इस प्रकार की कल्पना करते हैं, सित सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग। इसी प्रकार अरुण और पर धवल मुस्कान की वर्ण छायाएं अलगाते हुए कहते हैं कि जैसे रक्त किसले पर अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। दूसरी ओर पंत जी नील लहरों पर सांद किरण के भूजते हुए आलोक का विश्लेषण इस प्रकार करते हैं, लहरों पर स्वर्ण रेख सुंदर पड़ गई नील ज्यों अधरों पर अरुणाई प्रखर शिशिर से डर। वर्ण विवेक की तरह छायावादी कवियों ने ध्वनि संबंधी सूक्ष्मताओं की ओर भी ध्यान दिया। सन्नाटे की विचित्र सी आवाज दो शब्दों में पंत जी इस प्रकार रखते हैं, गुंजित अलिसा निर्जन अपार अथवा सांदवन के क्रमशः थकते हुए रोका या चित्र पत्रों के आनत अदरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। और पावस कालीन पपीहा झींगुर दादुर बादल बूंदे निर्जर आदि के से उठने वाले विभिन्न प्रकार के स्वरों का यह चित्र, पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झर का भारी झरझर, झिंगरों की झीनी झनकार, घनों के गुरगम हीर घर, बिंदुओं की छंती छनकार, दादरों के वे दुहरे स्वर, हृदय हरते हैं विविध प्रकार, शैल पावश के प्रश्नोत्तर। इंद्रिय बोध के अतिरिक्त अंतर्दृष्टिदायिनी कल्पना के मन में अनेक प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियां तथा उन अनुभूतियों को अच्छी तरह व्यक्त करने की क्षमता जगाई, जैसे सुधि में प्रिया के साथ की हुई बातों को दोहराना। पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारी सरल सुख से सुख कर सुर में तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में पल्लव आंसू। अथवा नव परिचय के क्षण की सतत रहस्यमयता, नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष, दूर जैसे सघन वन अंत वन पथ का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन की गति रोग कमायनी वासना। अथवा प्रणय के प्रथम उदय काल की मनस्थिति, दूर थी खींच कर समीप जो मैं हुई अपने ही दृष्टि से, जो था समीप विश्व दूर दूर तर दिखा अनामिका प्रेयसी। इस तरह की अनुभूतियों की सूक्ष्मता प्रसाद की कामायनी और प्रलय की छाया जैसी लंबी कविताओं में काफी मिलेगी। लेकिन इस कल्पना ने एक और छायावाद में जहाँ इनकी विशेषताएं पैदा की, वहां दूसरी ओर जब धीरे धीरे इसका अतिरिक्त होने लगा तो कल्पना प्रमण अंतर्दृष्टि अधिक गहन गुण और रहस्यमय हो गई। फलतः गहराई की जगह दुर्बोध उलझनों तथा अस्पष्ट भावों की सृष्टि होने लगी। प्रसाद जी की कामायनी में ऐसे स्थल काफी हैं। कल्पना की उच्च उड़ान से कभी कभी वस्तु चित्रण में भी अस्पष्टता आई, जैसे पंत जी की अप्सरा में। किंतु निराधार कल्पना के विकार अधिक प्रकट हों इसके पहले यथार्थवाद की तीव्र आँच से छायावादी आइकेरस के कल्पना के मोमी पंख पिघलने लगे और 36 तक जाते जाते अपने आप कविता में कल्पना शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। छायावाद की स्वानुभूति भावुकता कल्पना आदि से अपने अनुकूल शब्द चयन वाक्य विन्यास की योजना तथा छंद गठन भी किया। छायावाद को उत्तराधिकार में द्विवेदी युग में वित्तात्मक शब्द समूह प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा न तो वैयक्तिक अनुभूति की भावुक व्यंजना हो सकती थी और न वस्तुगत सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण हो सकता था। परंतु छायावादी भावुकता का विद्युत स्पर्श होते ही कल्पना के पंखों का सहारा पाकर जड़ भाषा उन्मुक्त आकाश में उड़ चली। अतीत यात्रा में कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट आदि संस्कृत कवियों की ललित पदावली मन के साथ लिपटी हुई चली आई। अपने मध्ययुगीन ब्रजभाषा काव्य के भी अनेक शब्द जो संस्कार स्वरूप अवचेतन में पड़े हुए थे ऊपर आ गए। रविंद्रनाथ की संस्कृत शार्दुल बंगला कविताओं की गूंज ने भी नवीन शब्दों का वातावरण तैयार कर दिया। अंग्रेजी की रोमांटिक कविताओं को पढ़ते पढ़ते भी काफी शब्द मन ही मन अनुदित होते रहे। इस प्रकार पतझर की भाषा देखते देखते कुशमित शब्दों से लद गई। शब्दों के चयन और निर्माण में छायावादी कवियों ने कितना श्रम किया इसका कुछ आभास शब्द शिल्पी पंत की जी की पल्लव की भूमिका से हो सकता है। फिर भी छायावादी कविता का शब्द सौंदर्य उसके स्वतंत्र शब्दों में उतना नहीं है जितना शब्दों के लयमय क्रम में है। अलग अलग होने पर वे शब्द प्रायः संस्कृत के काव्यों अथवा कोशों में मिल जाएंगे, लेकिन यदि उन्हीं शब्दों को कविता के संगीतमय क्रम में देखें तो पता चलेगा कि यह शब्द मैत्री अथवा लय अभूतपूर्व है। पंत प्रसाद निराला महादेवी की रचना से एक एक उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया जा सकता है। पंत। स्वर्ण मुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहंग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नव के छोर। प्रसाद। मधुमय वसंत जीवन वन के व अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। महादेवी। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। निराला। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इन चारों उदाहरणों से संपूर्ण छायावादी काव्य के शब्द चयन का यूं पता नहीं चल सकता, लेकिन मुख्य प्रवृत्ति का आभास मिल सकता है। इसके अतिरिक्त चारों कवियों की विशिष्ट रुचियों का भेद भी मालूम हो जाता है। पंद के शब्द अपेक्षाकृत छोटे, असंयुक्त वर्ण वाले, हल्के तथा वायवी हैं। प्रसाद के शब्द अधिक प्रगाढ़, मधुमय और नादानुकृतिमय हैं। माधवी के शब्दों में रुपये किसी स्पष्ट ठनक और खनक है, और निराला में संधि समास युक्त विविध जाति और ध्वनि वाले शब्दों में भी अनुप्रास में व्यंजन संगीत उत्पन्न करने की चेष्टा है। छायावाद के इन चारों कवियों में निराला को छोड़कर शेष तीनों में सर्वत्र अपने अपने ढंग से प्रायः एक से शब्दों का संकल्प मिलता है। केवल निराला में शब्द चयन की विविधता तथा अनिश्चितता है। छायावादी कविता के शब्द समूह का दूसरा पहलू वह है जहाँ अतिशय शब्द मोह दिखाई पड़ता है। मधुर ध्वनि वाले शब्दों के मोह में पड़कर छायावादी कवियों ने प्रायः आवश्यकता से अधिक शब्दों का व्यय किया है। जिस प्रकार छायावादी कविता में अनावश्यक कल्पना बाहुल्य मिलता है, उसी प्रकार अनावश्यक शब्दों की फजूल खर्ची भी दिखाई पड़ती है। फिर भी भावों का चित्र सीमित होने के कारण छायावाद का शब्दकोश काफी सीमित है। भावोच्छ्वास की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य प्रवाह में शब्दों का क्रम प्रायः गड़बड़ा गया। प्रसाद की भाषा में इस तरह के दुरान्वय वाले वाक्य बहुत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा को कोमल बनाने के लिए प्रायः सभी छायावादी कवियों ने है, था आदि सहायक क्रियाओं का बहिष्कार किया। इस पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए पल्लव की भूमिका में पंत जी लिखते हैं, खड़ी बोली की कविता में कविताओं और विशेषतः संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कविता का स्वर शिथिल पड़ जाता है और खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबसे अधिक मात्रा में विराजमान है को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिए, इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ ही होता है। फलतः कभी कभी इस प्रकार के निष्क्रिय वाक्यों की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। तरवर के छाया अनुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी। यह है आगे या पीछे दोनों ओर से कटी छटी नव कविता के भावानुकूल भाषा का एक नमूना, लेकिन ऐसा प्रायः कम ही हुआ है। शब्द चयन की तरह छंद और काव्य के क्षेत्र में भी छायावादी कवियों ने नई दिशाएं खोज निकाली। छायावाद से पहले कवियों की सारी शक्ति खड़ी बोली की स्वाभाविक छंद प्रवृत्ति तथा छंद प्रकृति की खोज में लग गई, और पर्याप्त श्रम के बाद लावणी, संस्कृत के अतुकांत, वर्णवृत्त आदि पदे चरणों वाले छंद निश्चित किए गए। छायावादी कवियों ने इस बदी परिपाटी के विरुद्ध पहली स्थापना यह की कि छंद प्रकृति का मौलिक आधार है, भावलय। छायावाद के भाविक कवि ने अनुभव किया कि पूर्ववर्ती कवियों की तरह छंदों के सांचे के अनुसार भावों को मोड़ना भावों के साथ अन्याय करना है। इसलिए उसने विविध भावलय के अनुसार छंद लय और भाव प्रवाह के अनुसार चरणों का आकार परिवर्तित किया। पंत जी के उच्छ्वास में भावानुकूल छंद के लय और चरणों का है द्रुत परिवर्तन दृष्टव्य है। सिसकते अस्थिर मान से बाल बादल सा उठकर आज सरल अस्फुट उच्छ्वास, अपने छाया के पंखों में नीरव घोष भरे शंखों में, मेरे आंसू गूथ फैल गंभीर मेघ सा आच्छादित कर ले सारा आकाश। इन सात पंक्तियों में क्रम से छह जगह छंद में मोड़ आए हैं। पीछे इस द्रुत परिवर्तन से भाव प्रवाह में बाधा पड़ते देख कवि ने छंद संगति की ओर विशेष ध्यान दिया। छंदों के ध्यान में भाव विवेक के आगमन से स्वच्छ छंद तथा मुक्त छंद का प्रचलन हुआ और निराला जी इसके प्रवर्तक हुए। भावों के स्वच्छंद विकास के लिए कवि ने चरण और तुक सबके बंधन ढीले करके केवल स्वर प्रवाह की रक्षा की। इस तरह प्राचीन धनाक्षरी छंद के स्वर प्रवाह में निराला ने अनेक मुक्त छंद लिखे। निराला के लिए छंद सचमुच ही छंद प्रतीत हुए, इसलिए उन्होंने स्वच्छंदतावाद के लिए छंदों के बंधन को तोड़ना अनिवार्य समझा। उनकी जूही की कली ऐसे ही मुक्त छंद में खुली। उन्होंने कविता से प्रगल्भ होकर कहा कि जातो प्रिय छोड़कर बंधन में छंदों की राह। इसी तरह लंबे भावों के लिए लंबी कविताओं के छंद विधान के अतिरिक्त छोटे छोटे भावों के लिए छायावाद ने लोकगीतों के आधार पर गीतों की रचना की। हिंदी में सफल प्रगति की रचना सबसे पहले छायावाद युग में हुई। निराला और माधवी वर्मा ने इस दिशा में सबसे अधिक काम किया। छंदों में चित्र की दृष्टि से स्वतंत्र संभवतः निराला के दिन सबसे अधिक है। अलंकार योजना की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती द्विवेदी युग की तुलना में तो छायावाद आगे ही है। संपूर्ण हिंदी काव्य में भी इसे अद्वितीय कहा जा सकता है। प्राचीन काव्य के पक्षधर आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है कि छायावादी कवियों ने लाक्षणिक साहस सबसे अधिक दिखाया। उनके अनुसार आभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। कल्पना प्रधान काव्य में अनूठी उपमाओं और प्रतीकों का बाहुल्य तथा भाव विदग्ध हृदय में लाक्षणिकता वक्रता भरी भाषा का निकलना स्वाभाविक है। स्वभाव की शीतलता बतलाने के लिए चांदनी का स्वभाव में वास करना और विचारों का भोलापन दिखाने के लिए विचारों में बच्चों को सांस लिखना नूतन प्रतीक व्यंजन का उदाहरण है। इस प्रकार गदगद स्वर के आह्लाद की अभिव्यक्ति के लिए खिला पुलक कदम सा था भरा गदगद बोल और प्रवासिनी प्रिया की मधुर याद को प्रकट करने के लिए प्रिया को दूर की तान से उपमित करना नवीन औपम विधान के सूचक है। प्रवासित रत्नावली के लिए निराला की यह उपमा देखिए, वह आज हो गई दूर तान इसलिए मधुर वाह और गान। छायावादी कवि विशेषतः पंत जी ने विशेषणों के प्रयोग में अद्भुत चमत्कार पैदा किया। एक छोटे से विशेषण के द्वारा पंत जी ने कई वाक्यों में कही जाने योग्य बात कह दी है। नील झंकार, गंध गुंजित, तुतला उपक्रम, मूर्छित आतप, तुतला भय, तुमुलतम जैसे सैकड़ों विशेषण जन्य सुंदर प्रयोग पंत में अनायास मिलेंगे। चित्रात्मकता छायावादी कवियों की बहुत बड़ी विशेषता है। विराट उपमाओं के सारे कभी कभी बड़े ही मनोरम चित्रों की रचना की गई है, जैसे महादेवी के ये दो चित्र, अमली अंबर के रुपहली सीप में अरल मोती सा जलती जब कांपता, और तम तमाल ने फूल गिरा दिन पलकें खोली। इन सब का महत्व स्वीकार करते हुए भी पंत जी के शब्दों में कहना है कि छायावाद वाक काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। छायावाद के बारे में प्राय कहा जाता है कि इसका संबंध तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन से कतई नहीं था। आलोचकों का बड़ा पुराना आरोप है कि जिस समय देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था, छायावादी कवि कल्पना लोक में बैठकर हितरंत्री के तार बजाया करते थे। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जो साहित्य को समाज का अविकल अनुवाद समझते हैं। अच्छी तरह से देखने पर पता चलेगा कि छायावाद ने अपने युग को अत्यंत आवश्यक रूप में अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दो मोर्चे थे, एक मोर्चा प्राचीन सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध था और दूसरा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। निराला के अपन छोटी प्रसंग में राम सीता से आधुनिक युवक के हृदय की बात कहते हैं, छोटे से घर की लघु सीमा में बधे हैं क्षुद्र भाव। यह सच है प्रिय, प्रेम का पयोनिधि तो मरता है सता है नेसीम भू पर। राजनीति और आर्थिक रूप से मैं यही व्यक्ति स्वतंत्र शोषित कृषकों का पक्ष होकर विप्लव के बादल का आह्वान करता था। विप्लव राव से छोटे ही है शोभा पाते, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। सामंती रूढ़ियों से नारी को मुक्त करके भी छायावादी कवि ने राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दिया। तिरस्कृता विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहना, भोग्या नारी के संग में पावन गंगा स्नान की कल्पना करना और उसे देवी मासा से प्राण कहकर पुकार उठना आदि बातें आधुनिक कवि के नारी आदर्श के सूचक है। छायावादी कवि ने नारी को अपमान के पंख और वासना के पर्यंक से उठाकर देवी और सहचरी के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। नैतिकता की पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर उसने मानव विवेक पर आधारित प्रेम संबंधी नवीन मौल नैतिक मूल्यों की स्थापना की। सूखे सुधारवाद की जगह छायावाद ने रागात्मक आत्मसंस्कार का बीजारोपण किया। मध्यवर्ग को व्यावसायिक प्रयोजनशीलता तथा अत्यंत उपयोगितावादी दृष्टिकोण से मुक्त कर आदर्शवाद के उच्च आकाश में विचरण करने की प्रेरणा दी। जहाँ तक साम्राज्य विरोधी मोर्चा का सवाल है, उस पर छायावादी ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन परोक्ष रूप से साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश प्रेम जागरण तथा आत्मगौरव का गान गाया। भारत भूमि की प्रशंसा में प्रसाद के गाया हुआ गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चित्त को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विदा पर विवाह पर नाच रहे तरुशिखा मनोहर, फैला जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। देश प्रेम की भावपूर्ण व्यंजना है। इसी तरह प्रसाद का यह जागरण गीत है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समझ चला स्वतंत्रता पुकारती और अपने देशवासियों को जगाने के लिए ही छायावादी कवि अतीत गौरव का स्मरण करते हुए कहता है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन्हीं गीतों को ध्यान में रखते हुए महादेवी जी ने कहा कि राष्ट्रीय भावना को लिखे गए जय पराजय के गान स्थूल धरातल पर स्थित सूक्ष्म अनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके हैं वो किसी और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। परंतु छायावाद में जहाँ एक ओर सामंती और साम्राज्य मान्यताओं के विरुद्ध इस प्रकार का भावात्मक विद्रोह है, वहीं दूसरी ओर इनसे पलायन की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। महादेवी जी छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत भले ही कहें, किंतु छायावादी कविता में वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप में प्रकृति की ही प्रधानता है। छायावादी कवि ने सामंती सामाजिकता के विरुद्ध आधुनिक व्यक्ति स्वातंत्र का नारा तो अवश्य उठाया, लेकिन उसने वह व्यक्ति स्वातंत्र प्रकृति के सरल वातावरण प्राप्त करना चाहा। समाज से व्यक्ति को स्वतंत्र करके विकसित व्यक्तियों के आधार पर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था करने की जगह उसने प्रकृति की आदिम और सरस सरल व्यवस्था की कल्पना की। यह उसकी अतिशय व्यक्तिवादिता तथा और सामाजिकता है। इसी प्रकार उसने नारी को भी मुक्त करने की घोषणा तो की, किंतु उसे भी या तो एकदम अप्सरा बना दिया अथवा निष्प्राण देवी। बिना किसी ठोस आधार के उसका नारी मुक्ति आंदोलन नारी के लिए दूसरा कारागार बन गया। इस प्रकार नारी पुरुष के स्वच्छंद प्रेम का शिकार होने के लिए भी मुक्त हो गई। असीम और अनंत के नाम पर छायावादी कवि ने सार्वभौम भावना का तो प्रसार किया, किंतु उसी असीम और अनंत को अपने पलायन का विश्राम स्थल भी बना दिया। क्षुद्र आवश्यकताओं से ऊपर उठकर उसने उच्च आदर्शवाद का पाठ तो अवश्य पढ़ाया, लेकिन फिर कोरे आदर्शवाद की पट्टी बांधकर आंखों के सामने वस्तु स्थिति को ओझल कर दिया। परंतु ये सभी सीमाएं प्रायः उस युग के संपूर्ण मध्यवर्ग की हैं। उस युग के मध्यवर्गीय विचारों के प्रतिनिधि गांधीवाद में भी इसी तरह की संगतियां दिखाई पड़ती हैं। यह तो छायावाद संज्ञा कविता के लिए ही प्रयुक्त होती है, तथापि यह एक व्यापक जीवन दृष्टि थी। इसकी अभिव्यक्ति कविता के क्षेत्र में सबसे अधिक हुई, परंतु कहानी उपन्यास नाटक यहाँ तक की आलोचना भी इससे काफी प्रभावित हुई। प्रसाद के नाटक कहानियां और उपन्यास छायावादी दृष्टिकोण के प्रभाव को अच्छी तरह प्रकट करते हैं। अन्य कवियों में निराला के अप्सरा, अलका, निरूप महादि उपन्यास, महादेवी जी के अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं तथा पंत जी की कहानियां भी इससे प्रभावित हैं। सभी छायावादी कवियों तथा अन्य प्रभाववादी आलोचकों के आलोचनात्मक निबंधों पर भी छायावादी दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट है, विशेषतः महादेवी जी के निबंधों पर। काव्यशैली की भांति गद्य शैली पर छायावाद का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रभाव का सर्वोत्तम रूप प्रसाद और महादेवी के गद्य में मिलता है और निष्कृष्टतम रूप चंडी प्रसाद हृदयेश की कहानियों में। भावात्मक और कल्पना प्रवण जीवन दृष्टि होने के कारण छायावाद की अभिव्यक्ति मुख्यतः रचनात्मक साहित्य और उसमें भी केवल कविता में हुई। कुल मिलाकर छायावाद आधुनिक खड़ी बोली कविता के स्वाभाविक विकास के चरम पर रहती है। जैसा कि मुकुटधर पांडे ने छायावाद के आरंभिक युग में ही कहा था, इनवर्टेड कॉमा, इसका सूत्रपात उस महापुरुष की दिव्य लेखनी से हुआ है जो वर्तमान कालीन हिंदी भाषा का जनक माना जाता है, इनवर्टेड कॉमा। स्पष्टतः मुकुटधर पांडे का संकेत भारतेंदु हरिश्चंद्र की ओर था। मुकुटधर पांडे ने भारतेंदु को छायावाद का प्रवर्तक नहीं कहा, बल्कि उस परिवर्तन का सूत्रपात करने वाला कहा है जो कविता के भावराज्य में उस समय के अनुसार विगत 40-50 वर्षों में हुआ था। आज इस बात को समझने और मानने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब छायावाद को सर्वथा विदेशी प्रभाव मानकर उड़ा दिया जाता था। शर्माचार्य शुक्ल जैसे गंभीर आलोचक का भी विचार था कि यदि अनेक विदेशी वादों से प्रभावित छायावाद नाम की काव्यधारा हिंदी में न चल पड़ती तो मैथिली चरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि द्वारा प्रवर्तित हिंदी की प्राकृत काव्यधारा स्वच्छंदतावाद का स्वाभाविक विकास होता। जो यह होता तो क्या होता, जैसे अटकलबाजी छोड़कर यदि विचार करें तो स्पष्ट होगा कि मुकुटधर पांडे आदि की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की स्वाभाविक परिणति छायावाद के रूप में हुई। मुकुटधर आदि स्वच्छंदतावादी कवि वस्तुतः छायावाद के ही पुरस्कर्ता थे। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजी साहित्य में बॉन्स, वर्ड्सवर्थ आदि कवि शेली किट्स बायरन के पुरस्कर्ता थे। आज का इतिहासकार तो यही अनुभव करता है कि विदेशी साहित्य ने हिंदी की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के विकास में बाधा नहीं डाली, बल्कि उसे छायावाद में रूपांतरित होने में सहायता पहुँचाई। छायावाद को द्विवेद युग की प्रतिक्रिया कहने से कुछ लोगों के मन में धारणा बन गई है कि छायावाद पूर्ववर्ती कविता की परंपरा के विरुद्ध कोई एकदम नई काव्य प्रवृत्ति है। लेकिन जिनमें ऐतिहासिकता का थोड़ा सा भी बोध है वे जानते हैं ऐतिहासिक विकास पूर्ववर्ती युग के अंतर्विरोधों से तथा उसकी प्रतिक्रिया से ही होता है। फलतः छायावाद द्विवेद युग का ऐतिहासिक विकास है और इस प्रकार छायावाद हिंदी साहित्य की परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। काव्य श्रेष्ठों की दृष्टि से हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद छायावादी काव्य का ही नाम लिया जाता है। जिस प्रकार 12वीं-13वीं सदी में शुरू होने वाले मध्ययुगीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान का चरम उत्कर्ष 16वीं शताब्दी की भक्ति काव्य में हुआ, उसी प्रकार 19वीं सदी में शुरू होने वाले आधुनिक सांस्कृतिक जागरण का चरम उत्कर्ष 20वीं सदी के छायावादी काव्य तथा प्रेमचंद के उपन्यासों में हुआ। हिंदी साहित्य में छायावादी कविता का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ ही शाश्वत मूल्य है। छायावाद में आधुनिक अपेक्षाकृत कम और कल्पना वैभव अधिक है। छायावाद में अनुभूति अपेक्षाकृत कम और कल्पना वैभव अधिक है, इसलिए यह भक्ति काव्य के बराबर नहीं आता। फिर भी इसमें मानव हृदय को रसमग्न करने और शक्ति देने योग्य स्थायी गुण बहुत से हैं। छायावाद का ऐतिहासिक कार्य संक्षेप में रामलीला शर्मा के शब्दों में यह है कि इन्होंने कहा, द्विवेदी युग की वैष्णवी श्रद्धा और शशंक नैतिकता के बल दे पहले पहल आते अविश्वास और मानवीय प्रेम और श्रृंगार के स्वर सुनाए पड़ते हैं। नैतिकता के विरोध में उच्छृंखलता का रूप नहीं लिया। नए कवियों ने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए उस सामाजिक स्वाधीनता की मांग की जिसे पिछले युग के सामाजिक बंधन दबा कर रखना चाहते थे। इन कवियों को नए ढंग से प्रकृति का चित्रण शुरू किया। इस तरह की कविता को उन्होंने लक्षण ग्रंथों की सीमाओं से उबार लिया। उद्दीपन या उपदेश के लिए प्रकृति का वर्णन काफी नहीं था, प्रकृति रूप में भी प्रकृति का उपयोग किया, लेकिन पहले पहले हिंदी कविता में उसके यथार्थ चित्र देखने को मिले। सामाजिक रचनाओं में दलित वर्ग के प्रति भावुक सहानुभूति प्रकट की तो साथ ही साथ सामाजिक ढांचा बदलने के लिए विप्लव और क्रांति की मांग भी की। राष्ट्रवादी कविताओं में उन्होंने आनंद और प्रकाश में इष्टदेव की कल्पना की, लेकिन अपने जीवन की दारुण व्यथा को भी वे भुला नहीं सके। छंद और भाषा में नए प्रयोग करके उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों की बता दिया कि हिंदी कविता में एक नए युग का आरंभ हो गया है। इनोटेड कामाबंद।